एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
हाँ, ये किताब देखती है कि अमेरिका जैसे आप कह सकते हैं बड़े लोकतंत्र में युद्ध जैसे अहम और शायद सबसे बड़े फैसले कैसे लिए गए
और क्या ये फैसले हमेशा संविधान के हिसाब से थे, ये सवाल अहम है।
बिल्कुल। और आज जिस तरह के हालात हम दुनिया भर में देख रहे हैं, तनाव है, संघर्ष है, तो ये समझना कि मुश्किल समय में नेता कैसे काम करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और ये शक्ति का संतुलन वो कैसे बदलता है, ये जानना तो और भी जरूरी हो गया है।
हाँ, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सवाल उठता है कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे होता है और उसके नतीजे क्या होते हैं।
सही। क्या वाकई संकट के समय सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जानी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी सवाल की तह में जाने की कोशिश करते हैं आज।
हाँ, और इससे पहले कि हम किताब में और गहरे उतरें, थोड़ा लेखक के बारे में जान लें। माइकल बिशलॉस वो कोई आम इतिहासकार नहीं है। उन्हें तो मतलब एक तरह से राष्ट्रपतियों के मन की बातें पढ़ने वाला माना जाता है।
हाँ हाँ, ये उनकी खासियत है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, कब हुआ, वो अंदर तक जाते हैं। राष्ट्रपतियों की पर्सनल डायरी, उनके सीक्रेट टेप्स, उनके करीबी लोगों की बातें, इनके जरिए वो दिखाते हैं कि उस वक्त माहौल कैसा था, नेताओं के अंदर क्या चल रहा था, उनके डर, उनकी उम्मीदें, वो किस दुविधा में थे।
वो दिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ पॉलिसी या राजनीति से नहीं बनता, उसमें इंसानी जज्बात, कमजोरियां, ये सब शामिल होता है। और कमाल यह है कि इतनी गहरी रिसर्च को भी वो एक कहानी की तरह बताते हैं, आम पढ़ने वाले को भी बांध लेते हैं।
सही। दशकों का अनुभव है उनका। वो हमें समझाते हैं कि जब कोई सत्ता के शिखर पर होता है, खासकर जब युद्ध जैसे बड़े फैसले लेने हो, तो दुनिया कैसी दिखती है। ये जो मानवीय पहलू है ना, यही इस किताब को खास बनाता है। सिर्फ इतिहास नहीं, उससे कहीं ज्यादा।
तो ये किताब बताती क्या है? अगर संक्षेप में कहें तो ये अमेरिकी इतिहास की कहानी है, लेकिन एक खास एंगल से। वो एंगल है युद्ध छेड़ने की शक्ति का। संविधान बनाने वालों ने तो ये शक्ति साफ साफ कांग्रेस यानी संसद को दी थी।
हाँ, उनका इरादा यही था कि कोई एक आदमी मतलब राजा की तरह पूरे देश को युद्ध में ना झोंक दे, फैसला मिलकर हो।
लेकिन बिशलॉस दिखाते हैं कि असल में हुआ ठीक उल्टा। धीरे धीरे एक एक युद्ध के साथ ये ताकत संसद से निकलकर राष्ट्रपति के पास आ गई।
अच्छा, मतलब ये कोई प्लानिंग नहीं थी?
नहीं, कोई सोची समझी साजिश नहीं, ये धीरे धीरे हुआ। हर नया संकट आया और उसने राष्ट्रपति को मौका दिया अपनी ताकत बढ़ाने का। और ये सिर्फ शक्तियों का खेल नहीं है। किताब ये भी बताती है कि इस सब में कई बार राष्ट्रपतियों ने जानकारी छिपाई, जनता को पूरी बात नहीं बताई, या जो संवैधानिक तरीके थे उनको नजरअंदाज किया।
तो ये किताब उन खास पलों पर फोकस करती है जब युद्ध का रास्ता चुना गया। क्यों चुना गया और उसके नतीजे क्या हुए, न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि खुद अमेरिकी लोकतंत्र पर उसका क्या असर पड़ा।
बिल्कुल। चलिए कुछ खास राष्ट्रपतियों के उदाहरण देखते हैं, इससे पता चलेगा कि ये शक्ति का ट्रांसफर कैसे हुआ। बैचलर शुरू करते हैं जेम्स मैडिसन से। वो खुद संविधान बनाने वालों में से थे और 1812 में ब्रिटेन से युद्ध के समय राष्ट्रपति थे।
हाँ, मैडिसन का केस इंटरेस्टिंग है। वो एक तरह से ओरिजिनल सिस्टम का प्रतीक है। वो खुद तो युद्ध नहीं चाहते थे, पर कांग्रेस में एक गुट था, वॉर हॉक्स, जो युद्ध के लिए जोर दे रहा था।
हाँ, दबाव बहुत था, पर अहम बात यह है कि उन्होंने संविधान का पालन किया। उन्होंने कांग्रेस से बाकायदा युद्ध की घोषणा करवाई। ये दिखाता है कि शुरू में सोच यही थी, युद्ध का फैसला सब मिलकर लेंगे, कोई एक व्यक्ति नहीं।
लेकिन लगता है ये आदर्श स्थिति ज्यादा टिकी नहीं?
नहीं टिकी। कुछ दशक बाद ही जेम्स के पोल्क और मेक्सिको अमेरिकी युद्ध जो 1846 में हुआ, उसके साथ कहानी बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ बिशलॉस दिखाते हैं कि कैसे एक राष्ट्रपति युद्ध शुरू करने के लिए संकट बना सकता है।
संकट बना सकता है मतलब?
हाँ, पोल को जमीन चाहिए थी मेक्सिको से, कैलिफोर्निया वगैरह, तो उन्होंने जानबूझकर अपनी सेना एक विवादित इलाके में भेज दी। वहां झड़प हुई, फिर उन्होंने कांग्रेस में जाकर कहा, देखो जी, मेक्सिको ने हमला कर दिया। उनका वो मशहूर जुमला था, अमेरिकी धरती पर अमेरिकी खून बहाया गया है।
अरे, तो ये एक तरह से बहाना बनाया गया?
बिल्कुल। ओके की पहली बड़ी मिसाल मानते हैं। ये एक खतरनाक मोड़ था। राष्ट्रपति ने कांग्रेस को लगभग मजबूर कर दिया युद्ध के लिए।
उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया कांग्रेस में या मीडिया में?
सवाल उठे थे। बिशलॉस बताते हैं कि कुछ लोगों ने, जैसे अब्राहम लिंकन जो तब कांग्रेस में थे, उन्होंने पोल्क से पूछा भी कि भाई सबूत दो, खून ठीक किस जगह बहा है। लेकिन वो राष्ट्रवाद और जमीन बढ़ाने की जो लहर थी वो इतनी तेज थी कि ज्यादातर सवाल दब गए। ये दिखाता है कि युद्ध के माहौल में आवाज उठाना कितना मुश्किल हो जाता है।
सही बात है। इसके बाद आते हैं अब्राहम लिंकन और गृह युद्ध 1861 से 1865। ये तो बिल्कुल अलग मामला था। यहाँ तो देश बचेगा या नहीं ये सवाल था।
हाँ, अस्तित्व का संकट। और यहाँ बेशलॉस दिखाते हैं कि कैसे एक राष्ट्रपति देश बचाने के लिए ऐसी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। लिंकन ने कांग्रेस का इंतजार नहीं किया, सेना खड़ी कर दी, बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया और सबसे विवादित, उन्होंने हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार सस्पेंड कर दिया।
क्या ये सत्ता का लालच था?
बेशलॉस इस पर जोर देते हैं कि नहीं, ये लालच नहीं था, ये देश को संघ को बचाने की मजबूरी थी। लेकिन इसने एक नजीर जरूर कायम कर दी कि राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति संविधान के कुछ हिस्सों से भी ऊपर जा सकते हैं। हालांकि बेशलॉस ये भी दिखाते हैं कि लिंकन ने इसकी भारी नैतिक कीमत चुकाई, वो इस बोझ तले हमेशा दबे रहे।
तो क्या लिंकन के इन कदमों ने, भले ही मजबूरी में उठाए गए हों, आगे आने वाले राष्ट्रपतियों के लिए रास्ता थोड़ा आसान कर दिया कि वो भी आपातकाल का नाम लेकर मनमानी कर सकें?
हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। लिंकन का इरादा नेक था, पर उनके एक्शंस ने भविष्य के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता था। बेशलॉस यही दिखाते हैं, हर राष्ट्रपति का काम, चाहे उस वक्त कितना भी जरूरी लगे, उसका असर भविष्य पर पड़ता है।
और ये गलत इस्तेमाल शायद सबसे साफ तौर पर हमें लिंडन बी जॉनसन यानी LBJ और वियतनाम युद्ध के मामले में दिखता है।
बेशलॉस इसे राष्ट्रपति की बेलगाम ताकत और त्रासदी का चरम बिंदु मानते हैं ना?
बिल्कुल। LBJ ने वियतनाम में अमेरिका की जो भूमिका थी उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने 1964 की गल्फ ऑफ टोंकिन घटना का इस्तेमाल किया। बाद में पता चला कि उस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था।
अच्छा।
हाँ, और उसके आधार पर उन्होंने कांग्रेस से एक प्रस्ताव पास करवा लिया। ये युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं थी, पर इसने राष्ट्रपति को वियतनाम में सभी जरूरी कदम उठाने की खुली छूट दे दी। बेशलॉस इसे ब्लैंक चेक कहते हैं, एक खाली चेक जिस पर राष्ट्रपति कुछ भी भर सकते थे। और नतीजा हम सब जानते हैं, एक भयानक युद्ध, लाखों जाने गई, अमेरिकी समाज बुरी तरह बट गया और आखिर में LBJ की प्रेसिडेंसी ही तबाह हो गई।
हाँ, बेशलॉस LBJ के अंदर के संघर्ष और उनके धोखे को भी दिखाते हैं कि कैसे वो अंदर ही अंदर शायद समझते थे कि ये युद्ध बेकार है, पर बाहर वो जनता को जीत का झूठा दिलासा देते रहे।
ये उदाहरण तो सच में डराने वाला है। दिखाता है कि जब कांग्रेस अपनी भूमिका नहीं निभाती और राष्ट्रपति को इतनी खुली छूट मिल जाती है तो क्या हो सकता है।
बिल्कुल।
यहाँ व्यक्ति का चरित्र, उसका अहंकार, राजनीतिक दबाव, ये सब मिलकर एक राष्ट्रीय त्रासदी बन जाते हैं।
तो इन सब उदाहरणों से कुछ बड़े सबक या कहिए विषय उभर कर आते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा वो है संवैधानिक तनाव और शक्ति का राष्ट्रपति की ओर खिसकना। ये किताब का निचोड़ है, कैसे युद्ध की ताकत धीरे धीरे संसद से राष्ट्रपति के पास चली गई। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा छल कपट का इस्तेमाल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर बेशलॉस साफ दिखाते हैं, पोल्क से लेकर LBJ तक कई राष्ट्रपतियों ने युद्ध में जाने या उसे लंबा खींचने के लिए जानकारी छिपाई, तथ्यों को मोड़ा या जनता से सच नहीं बोला।
ये हमें सिखाता है कि सरकारी दावों पर, खासकर संकट के समय, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, सवाल पूछना जरूरी है।
तीसरा विषय है कांग्रेस की घटती भूमिका। जैसे जैसे राष्ट्रपति पावरफुल हुए, संसद कमजोर होती गई। कई बार तो कांग्रेस ने खुद ही अपनी शक्ति राष्ट्रपति को सौंप दी, जैसे वो गल्फ ऑफ टोंकिन प्रस्ताव।
हाँ, ये चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के कमजोर होने का संकेत है।
चौथा, जनमत की दोधारी तलवार। हमने देखा कैसे जनता का गुस्सा मैकिनली को युद्ध की तरफ धकेल सकता है, कैसे पोल्क जनता की भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे वियतनाम युद्ध के खिलाफ बढ़ता जनमत जॉनसन को सत्ता से हटा सकता है।
भारत में भी हम देखते हैं ना कि पब्लिक ओपिनियन का कितना असर होता है बड़े फैसलों पर।
बिल्कुल। और आखिर में एक मानवीय पहलू, कमान का व्यक्तिगत बोझ। युद्ध का फैसला लेना सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं है, ये एक गहरा नैतिक और भावनात्मक बोझ भी है।
हाँ, लिंकन का दर्द, जॉनसन का संताप, ये याद दिलाते हैं कि नेता भी इंसान होते हैं और उनके फैसलों का वजन बहुत भारी हो सकता है।
किताब में कई बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ खास विचारों को अगर फिर से देखें।
हाँ, जैसे वो बुनियादी बात कि संविधान बनाने वालों का इरादा था कि युद्ध का फैसला कोई एक व्यक्ति न करे बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर करें, ताकि किसी की व्यक्तिगत सनक या महत्वाकांक्षा देश को मुसीबत में न डाल दे। ये उनकी दूर की सोच थी।
लेकिन फिर पोल्क का उदाहरण ये कड़वी सच्चाई दिखाता है कि राष्ट्रपति युद्ध के लिए संकट का इंतजार ही नहीं करते, बल्कि वे संकट बना भी सकते हैं या उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये तो शक्ति के दुरुपयोग का एक खतरनाक तरीका है।
बिल्कुल। और लिंकन का मामला ये मुश्किल सवाल खड़ा करता है कि क्या देश बचाने के नाम पर नियम तोड़ना सही है, और अगर हाँ तो कहाँ तक। इसका कोई आसान जवाब नहीं है।
सही।
और LBJ का उदाहरण तो एक सीधी चेतावनी है कि जब संसद अपनी निगरानी की भूमिका छोड़ देती है और सरकार को ब्लैंक चेक दे देती है तो नतीजे भयानक हो सकते हैं।
बिना रोक टोक की शक्ति का खतरा हमेशा रहता है।
तो इन ऐतिहासिक सबकों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ये आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। पहली सीख तो है जानकारी को आलोचनात्मक नज़र से देखना। जब भी सरकार कोई बड़ा दावा करे, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा या फौज के मामले में, तो हमें सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। बेडलॉस की किताब बार बार दिखाती है कि सरकारी सच हमेशा पूरा सच नहीं होता। दूसरी बात, शक्ति संतुलन पर नज़र रखना। ये किताब एक पैटर्न दिखाती है। संकट में ताकत अक्सर सरकार के मुखिया के पास जमा हो जाती है। किसी भी लोकतंत्र में, चाहे वो अमेरिका हो या भारत, ये देखना नागरिकों और संस्थाओं का काम है कि ये संतुलन बिगड़े नहीं। बाकी संस्थाएं जैसे संसद, कोर्ट, मीडिया, ये अपनी भूमिका निभाते रहें।
तीसरा, नेताओं को आंकते समय सिर्फ उनके भाषण न सुने। उनका चरित्र कैसा है? दबाव में वो कैसे फैसले लेते हैं? क्या उनमें सच बोलने की हिम्मत है? बेशलॉस हमें याद दिलाते हैं कि ये व्यक्तिगत गुण सार्वजनिक जीवन में बहुत मायने रखते हैं।
और शायद सबसे जरूरी, नागरिक जागरूकता और भागीदारी। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक नहीं है। नेताओं को जवाबदेह बनाए रखने के लिए, शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हम नागरिकों का जागरूक और सक्रिय होना बहुत जरूरी है। ये किताब इसी नागरिक जिम्मेदारी का एहसास कराती है।
अगर मुझसे पूछें कि इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, तो वो ये है कि युद्ध और संकट के समय राष्ट्रपति की शक्ति का बढ़ना ये लगभग तैसा लगता है, एक तरह की ऐतिहासिक मजबूरी जैसी। लेकिन यही चीज लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के लिए लगातार चौकन्ना रहना और सवाल पूछते रहना जरूरी है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि जब संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं, तो सब कुछ नेता के व्यक्तिगत चरित्र पर आ जाता है, उनके विवेक पर, उनकी नैतिकता, उनकी ईमानदारी, सत्ता को संभालने की उनकी काबिलियत। इन चीजों का असर लाखों जिंदगियों पर पड़ता है। ये किताब याद दिलाती है कि लीडरशिप सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, शायद सबसे बड़ी।
और यहीं पर हम आज की चर्चा रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए जरूर छोड़ जाते हैं। बेशलॉस दिखाते हैं कि पिछली सदियों में राष्ट्रपतियों ने कैसे धीरे धीरे ज्यादा शक्ति हासिल की। आज के इस डिजिटल युग में, जहां जानकारी इतनी तेजी से फैलती है और संकट भी ज्यादा तेजी से आते हैं, क्या सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखना और भी मुश्किल नहीं हो गया है?
सोचने वाली बात है। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आज के नागरिकों और संस्थाओं को क्या नई भूमिका निभानी होगी? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।